नमस्कार। तृतीय वर्ष बीए उर्दू के लिए हम कुछ एक्सपर्ट्स से बातें कर रहे, कुछ टीचरों से बातें कर रहे और उनसे बातें करके हम अपना जो कोर्स है उसके बारे में अधिक जानकारी, अधिक मालूमात प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि हमने गज़ल के बारे में जाना, अफसाना के बारे में जाना और ऐसे बहुत से उसूलों के बारे में, या जैसे उर्दू साहित्य में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उनके बारे में हमने एक्सपर्ट से जानकारी ली। इस जानकारी से हमको ये पता चला कि उर्दू साहित्य में गज़ल, शेर, अफसाने, इसका जो महत्व है वो काफ़ी बड़ा है। और ये खाली पढ़ना जरूरी नहीं है बल्कि उसे अच्छी तरह से जान लेना, बिल्कुल दिल से जान लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खाली शब्द रह जाएंगे। जैसे कि पिछले बार सर ने बताया कि जो बात दिल को लगे वो अच्छी तरह से पहुंचती है, और जब हम दिल से जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमको वो जल्दी समझ में आ जाती है। उर्दू साहित्य में जैसे कि अपना कोर्स है तृतीय वर्ष का, URD 463, अदबे अतफास ये जो कोर्स है और जो किताब उसके लिए मुकर्रर की गई है वो है फने तनकीद और उर्दी तनकीद निगारी। अब जैसे कि मैंने कहा कि उर्दू साहित्य में ऐसे बहुत से भाग है जिनके बारे में बच्चों को मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, और ये मालूमात अगर उसके बारे में जानने वाले एक्सपर्ट्स जो है उनसे अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। आज हम तनकीद के बारे में बातें करेंगे और ये अधिक जानकारी हमको जो साफ देने वाले हैं उनका नाम है खान हसनैन आकिब सर, जो GN आज़ाद कॉलेज पुसद यवतमाल से यहाँ आए हुए हैं। सर बहुत दूर से आए हुए हैं और उनका उद्देश्य यही है कि अपने BA के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं उर्दू के, उनको तनकीद के बारे में मालूमात करा दे ताकि ये जानकारी हासिल करने के बाद वो ना केवल इसके बारे में जाने, इसके बारे में सोचे भी और अच्छी तरह से वो अपने परीक्षा में लिख भी पाए। खान हसनैन आकिब साहब का तनकीद के बारे में बहुत बड़ा अभ्यास है और उर्दू साहित्य में उनकी जो रुचि है वो रुचि उनको यहाँ तक ले आई हुई है। जो चुनिंदा लोग हमने सिलेक्ट किए हुए हैं उनमें उनका नाम काफ़ी ऊपर है। नमस्कार सर।
नमस्ते।
मैं सर्वप्रथम आपका स्वागत करता हूँ हमारे विद्यापीठ की ओर से, और मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि तनकीद का मतलब क्या है, तनकीद किसे कहते हैं और उर्दू साहित्य में तनकीद का क्या महत्व है।
सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि जो आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जो कुछ भी थोड़ी बहुत मालूमात है वो बच्चों को दे सकूं। तनकीद एक उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका रूट वर्ड नकद से आया है।
नकद,
जिसको हम मराठी में नकद बोलते हैं, ये वहाँ से आया है। अरबी में उसके माना चेक करने के हैं, इसीलिए वो नकद से तनकीद बना है।
अच्छा।
तो किसी चीज़ को, जैसे एक सुनार होता है वो सोना लेता है तो पहले उसको देखता है, घिसता है उस पर कि ये सोना खरा है या खोटा है, तो तनकीद इसी को कहते हैं।
अच्छा।
किसी भी चीज़ को चेक करने का, उसको देखने का अमल कि वो उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो तनकीद कहलाता है। तनकीद के अब अगर हम दो मीनिंग लेते हैं उसके, एक तो ये मीनिंग हो गए कि भी खोटा और खरा इसको परखना, दूसरे अगर हम उसके इस्तलाही माना अगर लेते हैं जिसको हम ऑक्यूपेशनल डेफिनेशन कहते हैं, तो इस्तलाही मानों में उसके माना हो, इसके मफहूम ये निकलता है कि किसी एक अदबी पारे को, यानी अगर एक गज़ल ले लीजिए आप, कोई अफसाना ले लीजिए, कोई ड्रामा ले लीजिए, इसको आप ऐसे तजिए से गुजारें जिसमें आप उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयाँ, उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए उसमें क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़ आ गई है जो उसमें नहीं होनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ें जो है वो सब तनकीद का हिस्सा है, वो उसके इस्तलाही माना हो गए। और तनकीद के वैसे माना अगर लेते हैं तो हमने ये देखा है कि भी लोग इस वर्ड का, तनकीद का इस्तेमाल आम ज़िंदगी में भी करते हैं, बोलते हैं कि मुझ पर तनकीद कर रहा है, मतलब ये कि वो बुरा मानते हैं। तो आम ज़िंदगी में तनकीद करना मतलब कुछ बुरा बोलना, लेकिन जब हम उसको इस्तेलाही मानों में लेते हैं तो उसका मतलब सिर्फ बुरा नहीं है बल्कि उसकी अच्छाइयाँ अलग कर देना और उसकी जो बुराइयाँ हैं जो नहीं होनी चाहिए वो अलग रख देना और जो अच्छाइयाँ हैं वो अलग रख देना कि भाई ये मेरा काम ये था, ये अच्छाइयाँ हैं और ये बुराई है।
सर जैसे कि अभी आपने कहा कि तनकीद बहुत बड़ा काम करती है
जी,
अच्छा क्या है बुरा क्या है उसकी सोच हमको देती है साहित्य में
जी,
तो ये जैसे कि साहित्य तो लिखा जाता है अपने दिल की बात होती है
जी,
जो लिखते हैं वो अपने दिल को साक्षी मान के सच सच लिख देते हैं, और ये रीडर के ऊपर या जो पढ़ने वाले उनके ऊपर निर्भर रहता है कि वो उसको स्वीकारे या नकार दे।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो जैसे कि आपने कहा कि तनकीद अपने को ये बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो साहित्य के अंदर तनकीद की क्या जरूरत होती है?
हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। साहित्य में तनकीद की, इलियट की बात मुझे याद आ रही है, इलियट ने कहा था कि तनकीद हमारी ज़िंदगी में इतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारे जीने के लिए सांसें ज़रूरी हैं।
क्या बात है।
तो इसका मतलब ही ये है कि जब मराठी में भी एक कहावत है कि निंदकाचा घर असावे शेजारी,
सही बात।
तो जब तक एक मैं गज़ल लिखता हूँ, अब मेरी गज़ल मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बहुत उच्च आला दर्जे की गज़ल है, लेकिन ये तो वो तनकीद निगार जो तनकीद कर रहा है ये बताएगा कि मेरी गज़ल वाकई उस दर्जे की है या नहीं है। तो अदब जब तक तनकीद ना हो तो आप अदब में जो कुछ भी तख्लीक कर रहे हैं, चाहे वो अफसाना लिख रहे हों आप, चाहे आप गज़ल लिख रहे हों, चाहे आप ड्रामा लिख रहे हों, चाहे आप इंशाइया लिख रहे हों या अदब की कोई भी सिंफ लिख रहे हों, जब तक उसकी तनकीद नहीं होगी उसका सही स्टेटस, उसकी सही हैसियत, अदबी हैसियत क्या है उसकी, वो हमको मालूम नहीं पड़ेगी। इसलिए अदब तनकीद अदब में होनी ज़रूरी है।
तो जैसे कि अभी आपने कहा कि तनकीद ना केवल लिखने वालों के लिए ज़रूरी है
जी,
बल्कि जो पढ़ते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है।
बिल्कुल बिल्कुल।
सर अभी तनकीद का जो आपने मायने बताए, तो अपने पास ऐसा तो कुछ साहित्य या कुछ प्रमाण चाहिए
जी
कि ये खरा है, ये थोड़ा कम है, ये बहुत ज़्यादा है या ये बेकार है, तो ऐसे कौन से प्रमाण उर्दू साहित्य में है कि जिनके जरिए हम गजल का तनकीद कर सकते हैं, ड्रामा का कर सकते हैं, अफसाने का कर सकते हैं, को जो प्रमाण है अपने पास,
उसूल उसके,
उसके उसूल क्या होते हैं कि ये बुरा है या ये अच्छा है,
सही सही,
इसके बारे में जरा बताइए।
तो इनको आप जो कह रहे हैं कि तनकीद के उसूल क्या होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि जब हम तनकीद अदबी तनकीद करने बैठे हैं तो अदब उसके कुछ उसूल तय किए बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
सही बात।
तो पहला उसूल तो ये होना चाहिए कि जिस अदबी पारे का, गजल है जो आपने कहा कि अदब की कोई भी सिंफ हो, उसको आपने सामने रखा और सबसे पहले आपने उसूल तय किया कि आपको तनकीद में सबसे पहला उसूल क्या अपनाना है। तो मुझे ये देखना है कि जो चीज लिखी गई है, जिस चीज की तख्लीक की गई है, वो बहुत पुरानी घिसी पिटी है और उसमें कोई नयापन नहीं है, ये पहले उसूल, एक उसका पहला उसूल है। तो
तो नयापन ये पहला प्रिंसिपल हो गया,
ये प्रिंसिपल है कि ये देखें कि उसमें फरसूदगी पुरानापन नहीं होना चाहिए। फिर उसका दूसरा उसूल ये है कि हम ये देखें तनकीद करने वाला, तनकीद में ये बात होनी चाहिए कि जो फनकार है, शायर है, शायरी अगर है तो शायर, अगर अफसाना है तो अफसाना निगार, ड्रामा है तो ड्रामा निगार, इन लोगों ने जो भी अदब तख्लीक किया है, अदब की जो भी सिंफ तख्लीक की है, तो उसमें उन्होंने अपना तजुर्बा डाल दिया है। उस तजुर्बे को, सिर्फ तजुर्बा डाल देना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये देखना है कि हम उस तजुर्बे को कितने मौसर तरीके से, असरअंदाज तरीके से उसमें डाल पाए। वरना वो तो कोई एक बहुत आम सी बात हो जाएगी कि ठीक है, वो तो राह चलता भी कोई, अगर हमारी अगर हमारा स्टूडेंट जो अभी ये सुन रहा है तो वो भी लिख लेगा, अब उसकी तो मश्क भी नहीं है, पुख्तगी भी नहीं है, ख्यालात में भी नहीं है, तो ये जब तक उसमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो कितने मौसर तरीके से, कितना असरअंदाज हो रहा है, ये उसका दूसरा उसूल। तीसरा उसूल अगर हम और उसको लेने बैठें तो अदबी फन पारे की जो फनी उसमें वो है एलिमेंट, अनसर जो है उसमें, तो वो भी देखना पड़ेगा फन उसमें है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि किसी ने कह दिया कि, एक साहब मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि निगाह फेर लिया चंपई सवेरों ने, तो मैंने उनसे कहा कि निगाह फेर लिया नहीं, निगाह फेर ली। तो ये है वो फन जो है उसका ग्रामर कवायद, तो कवायद के हिसाब से उसने बिल्कुल उसको वो भी देखना है, वो एक उसूल है कि जुबान की सेहत कैसी है उसमें,
बराबर
उसके कवायद की पाबंदी हो रही है या नहीं, ये सारी बातें उसमें, ये तीन उसके अहम तीन उसूल ये हैं।
तो उसके भाषा, उसके परिमाण, जो कंटेंट लिखा है वो
जी,
और जो जो जिस काल में वो लिखा गया है वो। सर ये तो अपने प्रिंसिपल्स बताए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी साहित्य प्रकार जैसे गज़ल है या ड्रामा है
जी,
वो लिख लिया जाता है और बाद में पता चलता है कि किसी धर्म के बारे में, मज़हब के बारे में, या किसी कम्युनिटी के बारे में, या जो देश के हालात है उसके बारे में, ऐसा कुछ उसमें आ जाता है कि जिसमें समाज में अंतर बढ़ सकता है
जी,
या कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो तंकीद की जिम्मेदारी यह भी है कि समाज में ऐसी द्विधा ना फैले, तो इसके बारे में जरा आप हमें बताइए। और ऐसे कुछ अगर आपके जहन में उदाहरण हो कि इसके कारण ये तंकीद ने ये किया और तंकीद के इस कारण इस साहित्य या किसी गजल का या ड्रामे का उसको बंद करना पड़ा या उसको समाज में नकार दिया, ऐसा कुछ है क्या, वो बताइए जरा।
देखिए, तनकीद का आपने जो कहा कि तनकीद ने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी चाहिए, तो उसका सबसे बेहतरीन मिसाल, पहले अगर मैं चलिए समाजी इसकी बात करूं कि तनकीद को समाजी सरोकार क्या हैं, तो तनकीद समाज में जो उसूल या जो कदरें हैं पहले ही से रायज हैं, उन कदरों को पहचानने का, उनको परखने का काम करती है,
सही
है, उसको तकसीम करने का काम नहीं करती,
काम नहीं करती।
तनकीद तो ये बताती है कि साहब ये नहीं होना चाहिए,
ये नहीं होना,
ये उसके अपने जो पैमाने तय किए हुए हैं, तनकीद ये बताएगी कि साहब आपने ये अफसाना लिखा है, इस अफसाने में आपने ये उनसर जो डाला है, ये उनसर जो है ये समाज के लिए, ये माशरे के लिए तकसीम करने वाला है, ये उसको तकसीम करेगा, इस तरह की इश्तियाल अंगेजी उसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसी पिछली मिसालें मिलती हैं कि भी बहुत सारे लोगों ने, जैसे एक, चलिए हम अगर इसकी मिसाल ले लें कि इसमें चुगताई का एक अफसाना लिहाफ,
अच्छा
अगर हम उसकी बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे जो सुन रहे हैं वो जानते हैं कि लिहाफ एक ऐसा अफसाना था जिसमें उर्दू में, जिसको पोर्नोग्राफिक, क्योंकि इसको जिंसियात जिसे कहते हैं जिंसियात, तो बहुत ज़्यादा उस पर बहुत शोर मचा, आज़ादी से पहले की बात है, फिर इसमें चुगताई पर लाहौर कोर्ट में मुकदमा चला, फिर मंटू, वो सादात हसन मंटू जो हैं वो उन पर भी, साथ ही साथ उन पर भी उनके अफसानों की वजह से जिंसियात का मुकदमा चला, दोनों साथ में, दो कई मरतबा कोर्ट में पेशी पे गए, आज़ादी जब 1947 में नहीं हुई थी, उसके पहले की बात है। तो समाज का सरोकार तनकीद से क्या है, वो ये इससे ये मिसाल वाजे करती है कि जिंसियात जो है वो समाजी मौजू है, समाज में एक जब तक वो अनार्की फैल जाएगी, अबाहियत फैल जाएगी, तो इसलिए ये पहलू ये है कि तनकीद का समाज से, तनकीद ने बताया कि ये समाज के लिए विघातक है, ये नुकसानदायक है, अगर आप ऐसे अफसाने लिखेंगे तो समाज में ये जिंसियात का मौजू बहुत तेज़ी से फैल जाएगा, ये तनकीद ने बताया। तनकीद का दूसरा काम जो आपने जो बताया कि तनकीद और दूसरी जिम्मेदारी क्या अदा करती है, तो आज हम देखते हैं कि गालिब, आज गालिब का इतना नाम है, 1934 में 34 के तकरीबन आसपास अब्दुलरहमान बिजनौरी, अब गालिब का जितना कलाम हम देखते हैं वो अब्दुलरहमान बिजनौरी जैसा नक्काद अगर गालिब को ना मिला होता तो गालिब गालिब शायद इतने गालिब ना होते जितने आज है।
क्या बात,
तो ये अब्दुलरहमान बिजनौरी जैसे नक्काद का जिसने गालिब पर तनकीद की गालिब शनासी में उसका नाम पहले नंबर पर आता है, फिर उसने गालिब के कलाम को छांटा, परखा, जिसको हम तनकीद कह रहे हैं उसको उसने परखा, फिर अच्छी अलग की चीजें दो गठरियां बना दी, है ना, दो पुटलियां बोलते हैं हम जिसको, एक अलग कर दी और एक अलग कर दी, और जो फिर जो अच्छे वाला माल निकला वो दीवाने गालिब, गालिब का कलाम, वो फिर अब जो हमको मिलता है वो अच्छे वाला कलाम है।
क्या बात है,
गालिब ने इतने साल तक सिर्फ इतनी थोड़ी किताब लिखी होगी,
सही बात है, सही बात,
कई लिखी होगी, लेकिन अब्दुलरहमान बिजनौरी जैसे नकाद ने उसको बाजू किया, वो कहा कि ये रख दो, ये काम की चीज है,
ये बहुत कठिन काम है
जी।
सर जैसे कि आपने कहा कि तनकीद बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाती है
जी,
लेकिन जिस तरह समय गुजरता जाता है समाज के विचारों में बदलाव आ जाता है
जी,
जो पुराने ख्याल आते वो निकल जाते हैं, जो मॉडर्न थॉट है या जो आधुनिक विचार है वो हम स्वीकारते हैं और उसका जो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, वो साहित्य में आ जाता है। तो जिस तरह साहित्य में भी अगर बदलाव आ जाता है तो तनकीद में ऐसा बदलाव कैसे, किस तरह से आता है और वो बदलाव आता है या नहीं? अगर मानो कि आप एक ही तनकीद लेके हुए बैठे हो और अगर वो काफी पुराना है, वो जो मेजरिंग रॉड है
जी, जी।
वो काफी पुराना है, तो हो सकता है कि आपका तनकीद भी फेल हो जाए मॉडर्न जमाने में। तो ऐसे कुछ आपके कुछ सामने उदाहरण है कि जो तनकीद का जो आउटडेटेड होना जी, जिसे जी, कहते हैं, उसके बारे में जरूर बताइए।
सर देखिए, बहुत आपने बहुत ही, मैं आपकी मतलब मुझे कबूल करना पड़ेगा कि आपने बहुत ही तैयारी के साथ सवाल बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक नए तरीके से आपने सवाल किया है। जो आपने मेजरिंग जो उसको रॉड कहा है, यानी जिसको पैमाना हम कहेंगे कि तनकीद के पैमाने, चूंकि अदब बदल रहा है,
सही बात,
पहले गजल थी कि तुम्हारे इश्क ने मुझे ये कर दिया, अब वो कुछ नहीं रह गया, अब गजल यहां तक चलकर आ गई है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है।
क्या बात है,
तो जमी के मसाइल पे आज बात हो रही है, तो क्या हो रहा है कि ये जब अदब के पैमाने बदल रहे हैं तो तनकीद का पैमाना क्यों नहीं बदलेगा?
सही बात।
वो तनकीद जिसमें ये था कि आपने इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा, वैसा क्यों, अब वो सब खत्म हो गया,
खत्म।
अब ये आ रहा है कि आपने जो चीज तख्लीक की है वो समाजी सरोकारों से कितनी हम आहंग होती है वो देखा जाए। जैसे फिराक गोरखपुरी की हम मिसाल ले लें,
फिराक गोरखपुरी
जी,
अच्छा,
रघुपति साहे फिराक, तो उनका अदब एकदम नया अदब था। एक मैं एक शेर देखिए,
हाँ जरूर जरूर,
कि शेर का जब पैमाना कैसे बदलता है कि देख दिल की जमी लरसती है, यादें जाना कदम संभाल अपना, इस लहजे का, तो जाहिर सी बात है कि जब अदब का रूप बदल रहा है तो तनकीद का भी रूप बदलेगा।
सही बात है,
है ना, ये हो रहा है कि बच्चे का साइज जब बदलता है तो उसके कपड़ों का साइज भी बदलता है, है ना, फैशन बदलता है। एक जमाने में हमने देखा कि बेल बॉटम फैशन चलती थी, तो अब खत्म हो गया, अब कोई नहीं पहनता, अब नई निकली, तो इसी तरह तनकीद का भी है कि तनकीद के अपने भी उसूल होते हैं, पैमाने होते हैं। पैमाने कौन तय करता है? तनकीद के पैमाने समाज तय करता है।
सही बात।
समाज में पैदा होने वाली जो रुझानात हैं पैदा होने वाले, वो तय करते हैं कि आज क्या चल रहा है। पहले जो चीज़ तनकीद जिस चीज़ को बुरा मानती थी, यही मिसाल मैं आपको दोबारा दूंगा, जिन्सियात का मौजू, जिन्सियात के जिस पर इस्मत चुगताई और सादत हसन मिंटू पर मुकदमे चले अदालतों में, अब उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठती। कहा कि अब वो तो बहुत आम बात हो गई है। तो तनकीद, ये अब इसके साथ साथ तनकीद को बदलना ही पड़ता है, क्योंकि ये समाजी, हम जो हम बोलते हैं नॉर्म्स, ये समाज की कदरें बदलती हैं, तो कदरों के साथ साथ समाज को बदलना पड़ता है।
सर, जैसे कि अभी आपने उदाहरण दिए कि जिस तरह समय गुजरता है, जो साहित्य है उर्दू साहित्य लिटरेचर, वो भी समाज के काफी करीब गया है। जैसे गरीबों का दुख दर्द उसमें आया है,
बिल्कुल,
राजे महाराजों का उसमें ज्यादा जिक्र नहीं आजकल, औरत का दुख दर्द आता है, बच्चियों का आता है, शिक्षा के कारण क्या क्या समस्याएं उनको उठानी पड़ती है, किस सांस से गुजरना पड़ता है, वो आता है। तो ऐसे आप कुछ उदाहरण देंगे कि जो समाज के बहुत करीब एक आधी रचना है या गजल है या जो भी है, और तनकीद ने उसको बहुत सराहा, उस पर कोई ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं किया या कोई उंगली नहीं उठाई, क्योंकि वो समाज की भाषा बोल रही है, समस्या बोल रही है, और ये तनकीद का जो काम सही मायने में है। ऐसा कुछ उदाहरण अगर आपके पास हो तो दीजिए, ताकि बच्चों को समझे कि तनकीद का सही इसका मतलब क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है।
देखिए, आप तनकीद ने जो अदब तख्लीक किया गया उसको अपना भरपूर जिम्मेदारी मानते हुए जो सही था उसको सही कहा, और सिर्फ सही कहा नहीं, जब वो समाज में माशरे में जो रुझानात चल रहे थे, तनकीद ने तख्लीक को उन रुझानात पर नापा, उन पैमानों पर परखा, और फिर उसके बारे में जो कुछ कहा वो समाज में माशरे में वो चलन बन गया। मजाज की नज़्म अगर आप देखें कि ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं, आवारा जो नज़्म है मजाज की, देखिए कहाँ तनकीद ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया उसको। एक तो मजाज की ये तख्लीकी, इस नज़्म की अपनी तख्लीकी कुव्वत थी जिसने इस नज़्म को ऊंचाई पर पहुँचाया, लेकिन इसके साथ साथ अगर उसको तनकीद निगार अगर उसको ना सराहते और अगर उसके बारे में उसको ना फैलाते समाज में, तो शायद वो इतनी ऊंचाइयों पर ना पहुंचती। अगर हम पीछे अगर देखें, बात करें, तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल की नज़्म शिकवा जवाब शिकवा, तो शिकवा जवाब शिकवा को देखिए आप, कि उस पर एक लहर चल पड़ी दोनों तरह से। एक तो तनकीद निगारों ने उसको सराहा, फिर एक ग्रुप तैयार हुआ जिन्होंने उसको मुखालिफत की, कि तनकीद निगारों का ग्रुप था। तो किसी चीज का उसूल है, जितनी आप मुखालिफत करेंगे वो उतनी तेजी से आगे बढ़ती।
क्या बात,
आपने देखा होगा कि भाई इश्क है ना, उर्दू शायरी का एक बहुत लाजमी जुज है इश्क। तो इश्क को आप देखिए कि वो उसको दबाए बुझाए ना बने इश्क, वो आग के जो बुझाए ना बने और लगाए ना लगे, तो ये वो चीज़ है। तो इसी तरीके से जब मुखालिफत बढ़ जाती है तो तनकीद अपना काम कर रही है कि अच्छा भी आप बता रही है कि भाई कि ये चीज़ उसमें ये अच्छाइयाँ हैं, ये बता रही है कि ये इसमें ये बुराइयाँ हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब ये छोड़ दिया जाए काम कारी पर, है ना, कारी पर छोड़ दिया जाए कि वो उसको कबूल करता है या नहीं करता है। अगर इसमें हवाले के लिए मैं चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल का कुलियात इकबाल भी पढ़ें बच्चे, अब्दुलरहमान बिजनौरी की अगर किताब गालिब शनासी अगर वो पढ़ी जाए, ज़ोए अंसारी की, अब्दुलरहमान बिजनौरी की किताब तनकीद की अगर पढ़ें बच्चे, तो हासिल करें अपनी लाइब्रेरी से, जहाँ अपनी उनकी लाइब्रेरीज में मिल सकती हैं कॉलेज की, वो हासिल करें।
सर, आपने शुरुआत में एलियट साहब का जिक्र किया
जी,
और तनकीद के बारे में आई रिचर्ड साहब ने भी जी, कुछ जी, कहा है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है
जी जी जी,
तो इसके बारे में जरा बताइए।
देखिए, तनकीद का एक रोल, तनकीद का एक किरदार, के तनकीद क्या काम करती है, आई ए रिचर्ड्स ने جو مغرب کا بہت بڑا نقاد تھا، اس نے ایک بات کہی ہے کہ تنقید اصل میں کسی ادبی تنقید، خاص طور سے تنقید سے مراد ہم ادبی تنقید ہی لے رہے ہیں، کوئی ذاتی تنقید نہیں لے رہے ہیں، ادبی تنقید مطلب جو ادبی جو تخلیقات ہیں اس کو دیکھنے کا پرکھنے کا تجزیاتی عمل. تو آئی اے ریچرڈس نے یہ کہا تھا کہ ادبی تنقید ادبی پارے کے لیے وہی کام کرتی ہے جو ایک ڈاکٹر انسانی جسم کے لیے کرتا ہے.
کیا
اب انسانی جسم کے لیے کیا کام کیا جاتا ہے؟ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی تشخیص کرتا ہے، یعنی ڈائگنوسس کرتا ہے.
صحیح بات.
اسی طریقے سے تنقید پہلے ڈائگنوس کرتی ہے اس کو.
کیا بات ہے، کیونکہ سمجھ کے ساتھ کے لیے ضروری ہے.
پھر تنقید کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں لائے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے کہ صاحب آپ کو یہ بیماری ہو گئی، اس میں یہ خرابی ہے، اب جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. جب تک ٹریٹمنٹ نہ ہو تو تنقید کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ بتائے کہ کیا ہونا چاہیے.
کیا ہونا چاہیے. صحیح بات. صحیح بات.
یہ ہے تنقید کا کام. ادھورا کام ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ بھائی صاحب آپ کو فلاں فلاں بیماری ہے، آپ چلے جائیے، ہو گیا. ارے صاحب علاج کون کرے گا؟ فیس تو علاج کی دے رہے ہیں. تو تنقید نگار کو بھی کہ آپ یہ ادبی پارا ہے، اس کے لیے آپ دونوں بھی چیزیں جب بتائیے، آپ تشخیص بھی کیجئے کہ اس میں کیا کمی ہے اور بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے.
سر جیسے کہ ابھی بہت اچھا ادھارن دیا آپ نے کہ ایک ڈاکٹر کا کام تنقید کرتی ہے اور وہ سماج کے سواستھ کے لیے
جی
اور اپنے مانسک انتی کے لیے بہت ہی ضروری ہے
جی.
لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ادبی تنقید ہے اس کے جو اصولات ہیں، اصول ہے اس کے
جی،
وہ کیا کیا ہوتے ہیں؟
ادبی تنقید کے اصول پر تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایک فرسودگی جو خیالات میں ہونی چاہیے وہ مطلب جو ہوتی ہے وہ نہ ہو، یہ وہ دیکھے.
برابر.
یہ اس کا کام ہے.
برابر.
پھر یہ دیکھے کہ جو ادیب ہے یا جو تخلیق کار ہے، کسی بھی صنف میں کام کر رہا ہو، افسانہ نگار ہو، شاعر ہو، ڈرامہ نگار ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اپنے تجربات کو شاعر تو وہ ہوتا ہے، ادب تخلیق کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے تجربات کو، اپنے مشاہدات کو، جو اس نے دیکھا، جو اس پر بیت رہی ہے، آپ بیتی، جب بیتی، ان سب کو اپنی رچنا، اپنی تخلیقات میں سمو دیتا ہے. تو صرف سمو دینا کافی نہیں ہے، کتنے اچھے طریقے سے وہ سموتا ہے اس میں، یہ دیکھے. یہ دوسرا اصول ہے اس کا. اور پھر یہ دیکھے کہ وہ جس زبان میں تنقید تخلیق کر رہا ہے، تو وہ تنقید نگار کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ اس زبان کی صحت سے واقف ہے یا نہیں ہے. جب آپ کو زبان ہی نہیں آتی تو آپ اس میں ادب کیسے تخلیق کر سکتے ہیں؟
صحیح.
ادب تخلیق کرنا ہے، شاعری کرنی ہو، افسانہ لکھنا ہو، تو پہلے تو زبان آنی ضروری ہے.
صحیح بات.
تو تیسرا اس کا فرض اصول یہ ہے.
سر آپ نے یہ جو تنقید کے اصول بتائے، وہ اگر یعنی وہ دوسرا تیسرا کچھ نہیں ہے بلکہ جو لکھنے والے ہیں
جی
ان کی بھی ذمہ داری وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے. ابھی تنقید کے دبستان جو رہتے ہیں جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں ذرا ہم کو بتائیے، اس کا مطلب ہی کیا ہے؟
جی جی جی. تنقید کا دبستان، دبستان جو لفظ ہے وہ کہتے ہیں فارسی زبان کا لفظ ہے.
اچھا، فارسی سے آیا ہوا ہے.
اور جیسے اسکول کو کہتے ہیں دبستان،
اسکول آف تھاٹ جیسے. صحیح بات.
اسکول. تو تنقید کے بھی مختلف دبستان یعنی اسکولس ہیں.
برابر.
جیسے ہمارے یہاں ہے کہ کالجز ہیں بہت سارے، تو کالج آف انجینئرنگ ہے، کالج آف فارمیسی ہے، اس طرح سے الگ الگ ہیں. ایسے ہی تنقید کے بھی الگ الگ دبستان ہیں، الگ الگ اسکولس ہیں، جس میں تاثراتی تنقید ہے، جمالیاتی تنقید ہے، جس میں مارکسی تنقید ہے، جس میں حیتی تنقید ہے.
اچھا.
جس میں ساختیاتی تنقید ہے. یہ ساری تنقید کے دبستان ہیں.
سر یہ جو دبستان آپ نے بتایا
جی،
کیا ابھی بھی وہی ہے یا اس میں کچھ بدلاؤ آیا ہے؟ کچھ پرانے جو دبستان ہے وہ نشٹ ہو گئے ہیں یا کچھ نیا وچار ان میں آیا ہے؟ ایسا کچھ ہوا ہے سمے کے چلتے؟
ہاں ایسا ہوا تو ہے. تنقید کے دبستان بھی جو طے ہوتے ہیں، وہ جو اسکولس قائم ہوتی ہیں تنقید کی، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ये तनकीद के जो दबिस्तान है, इसको अगर हम हमारे तलबा की आसानी के लिए अगर ये समझ लें कि 5-6 रंगों के चश्मे हम सामने रखते हैं,
क्या बात,
कहा कि साहब आप काले रंग का चश्मा पहनिए और बताइए कैसा नजर आ रहा है, तो वो वैसा देखेगा।
सही बात है।
फिर बदल दिया कि लाल रंग का चश्मा तो लाल दिखाई दे रहा है। तो जब नक्काद को समाज में जो रुझाना, जिस समय में, जिस वक्त में जो रुझाना चल रहे हैं, उस वक्त के रुझानात के सामने रखते हुए जो तनकीद का मूड रहता है, वो तनकीद जो है वो एक स्कूल हो जाती है।
स्कूल है, सही बात।
अब फिर उसका जो जो वो रहती है, मतलब तादुद जिसे कहते हैं हम, कि फ्लुएंसी या उसकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है, तो वो धीरे धीरे उसकी शिद्दत कम होती जाती है कि अब वो रुझानात की बात नहीं रही, ठीक है उसको बाजू रख दिया जाए,
बाजू रख दिया, सही।
दूसरा एक नया चश्मा पहन लिया जाए और उस चश्मे से देखा जाए कि अब ये जो तख्लीक है, ये अदबी तख्लीक, ये शायरी, ये अब कैसी,
सही बात,
क्या चाहिए, अब कैसा चल रहा है, क्या हो, अब नहीं चलेगा कि अभी साहब वो इश्क और आशिकी और शराब और कबाब, ये साहब नहीं चलेगा, अब क्या है मसाइल,
यानी दोनों पार्टियों की बदलने की जरूरत है, तनकीदी स्कूल और जो पढ़ने वाले लिखने वाले अदब जो है वो फ्लेक्सिबल होना, जिसे हम लवचिक कहते हैं। सर, ये जमालियाती और मार्किसी साइंटिफिक तनकीद, ये ऐसे जो प्रकार किए गए हैं
जी,
उसके बारे में जरा बताइए हमको।
देखिए, जमालियत पहले तासुराती तनकीद है।
अच्छा,
अगर मैं दोहरा दूं कि तासुराती तनकीद, जमालियाती तनकीद, साख्तियाती तनकीद, हय्यती तनकीद, मार्क्सी तनकीद, तरक्की पसंद तनकीद, ये सारी ये उसके टैग्स हैं, है ना, उसके ये उन्वानात हैं, स्कूल्स के, है ना। तो अब ये क्या है, जिस तरह से हम बोलते हैं कि भी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, ये तो ये क्या है, ये बताते हैं कि जो तनकीद की जा रही है तो उसका नौयत क्या है। अब अगर हम बात करेंगे तासुराती तनकीद, तो तासुरात से लफ्ज तासुरात ही से ये बात वाज़े है कि जाहिर सी बात है कि जो तासुर तनकीद निगार ने उस तख्लीक का लिया है, जो उसके जहन पर उसका असर उसने लिया है, वो उसने लिख दिया, तो ये हो गई तासुराती तनकीद। जमालियाती तनकीद, अगर एक आदमी, एक तनकीद निगार, मैं अगर तनकीद निगार हूँ और मैं एक गज़ल मेरे सामने आई और मैं उसमें हुस्न तलाश कर रहा हूँ, मैं उसमें ब्यूटी तलाश कर रहा हूँ, तो आप ये नहीं कहेंगे ब्यूटी मतलब ये कि मैं उसमें खूबसूरती का है, खूबसूरती अल्फाज की भी हो सकती है, खूबसूरती ख्यालात की भी हो सकती है, खूबसूरती कवायद की भी, या और ये, लेकिन मैं उसमें एक पहलू देखता हूँ कि हुस्न क्या है, तो अगर मैं वो देखता हूँ तो ये एक उस, और फिर मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं, तो एक स्कूल कायम हो जाता है, ना तनकीद का, तो बस अब वो उसको जो चल रहा है तो वो हो गया कायम, कि तनकीद का ये दबिस्तान कौन सा, तासुराती तनकीद का, जमालियाती तनकीद का, इस तरह से ये स्कूल कायम हो जाता है।
सर, तनकीद का संस्कृत और
इस तरह से ये स्कूल कायम हो जाता है।
सर, तनकीद का संस्कृत और फारसी का जो रिवायत है
जी,
तो वो कहाँ तक है और उसके क्या मायने रहते हैं? तनकीद जो स्कूल्स आपने बताए
जी,
उसमें फारसी और संस्कृत का जो रिवायत है
जी,
तो उसके बारे में जरा बताइए।
ये चूंकि ये स्कूल्स नहीं है, बाकायदा ये स्कूल्स नहीं है, स्कूल्स तो ये हैं
बराबर,
जो अभी अभी बात हुई हमारी कि तासुराती तनकीद, जमालियाती तनकीद, हय्यती तनकीद, साख्तियाती तनकीद, मार्क्सी तनकीद, तो इस पर मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा तलबा के लिए एक बात तो और थोड़ी सी मेरे जहन में आ रही है कि उनके लिए और आसानी हो जाएगी, कि मार्क्सी तनकीद के अगर जो कहा जाता है कि मार्क्सी तनकीद, यानी कैसे उसका पैमाना तय किया जाता है, तो कार्ल मार्क्स का नाम आप सुना ही है आप, तो ये कार्ल मार्क्स के जो इश्तराकी ख्यालात थे, कम्युनिज्म, तो कम्युनिज्म के ख्यालात क्या थे कि समाज में बराबरी होनी चाहिए, जो दबा कुचला तबका है,
अमीर गरीबी,
हाँ अमीर गरीबी वगैरह इस तरह के, तो जब नक्काद वहां बैठा और उसने ये चेक करने के लिए कि मजाज के नज्मों में क्या चीज मिलती है, तो उसने देखा कि मजाज की यहाँ तो एहतजाज का रवैया है, काहे पर एहतजाज कर रहा है, तो मुल्क में फैली हुई गुर्बत, नाइंसाफी, जुल्म, इसके खिलाफ, तो ये सब जो अनासिर थे ये काहे के थे? कार्ल मार्क्स के नजरियात को अब उसने ये किया, तनकीद निगार ने, कि आप तनकीद लिखनी शुरू की, कहा कि मजाज की शायरी में मजाज के यहाँ ये मिलता है कि दबे कुचलों की, ये कैसी तनकीद थी, ये काहे की तनकीद थी? ये तनकीद उसने मार्क्स के नजरियात को, कार्ल मार्क्स के नजरियात को सामने रखते हुए लिखा सब, तो ये तनकीद हो गई मार्क्सी तनकीद। जमालियाती तनकीद में ये बातें नहीं आएंगी, ये आएंगी कि साहब क्या खूबसूरत ख्याल पेश किया है, इस तरह से ये तस्वीर थी।
सही बात है।
तो ये इसमें
तो एक पूरी ख्याली जिंदगी है और एक दूसरी भीषण वास्तविकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। सही बात है। सर आप अगर हमें ये बताए कि उर्दू तनकीद के जो अविलन नमूने हैं, कि जो मॉडल है, उसके बारे में कुछ ऐसी मशहूर तनकीदी बताएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये वो अधिक जानकारी उसके बारे में ले सकेंगे, और ये इतनी मशहूर क्यों बनी, इसके भी क्या कारण गए, वो भी जरा बताएंगे तो अच्छा रहेगा।
जी देखिए, उर्दू तनकीद के अव्वलीन नमूने, उर्दू तनकीद का बहुत ज्यादा पुरानी तारीख नहीं है।
अच्छा।
और उर्दू तनकीद बाकायदा अंग्रेजी ही में बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है,
पुरानी।
तो जाहिर सी बात है कि उर्दू में तो होगी नहीं। लेकिन एक चीज के अगर हम अव्वलीन नमूनों की बात करें कि उर्दू तनकीद के अव्वलीन नमूने कहाँ पाए जाते हैं, तो वो बाकायदा तो नहीं, अलबत्तक बेकायदा मिलते हैं।
अच्छा।
जैसे मुल्ला वजही की सबरस आपने पढ़ी है, नाम सुना है कि
सबरस,
मुल्ला वजही ने सबरस लिखी थी। तो सबरस में मुल्ला वजही ने ये कहा था कि शायरी कैसी होनी चाहिए, उसने तय किया कि मुल्ला वजही ने, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने पहले भी कहा कि तनकीद का एक अपना बहुत तय होता रहता है, बदल सफ़र चलता रहता है और उसकी कदरें भी बदलती रहती हैं, उसका आहंग बदलता है, उसके रुझानात बदलते हैं। यूँ समझिए कि जिस तरह से तख्लीक बदलती है उसी तरीके से तनकीद बदलती है। तो उसने कहा था मुल्ला वजही कि अगर कुतुब मुश्तरी जो मसनवी है, मशहूर मसनवी है कुतुब मुश्तरी, कुतुब मुश्तरी में अगर आप देखें तो उसने कहा था कि शायर क्या है, शायर इसरार गैब को बेनकाब करता है, यानी जिसको हम कहते हैं कि हिंदी में जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।
सही बात है।
तो शायर ये काम करता है कि जो कुदरत के ने, कुदरत ने, फितरत ने अपने ऊपर जो पर्दे डाल रखे हैं वो उसके पर्दे उठाता है।
क्या बात है।
वो बताता है कि ये क्या है। उसकी बेहतरीन मिसाल अगर ये देखना चाहें आप तो अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ें, जिसमें फितरत की गमाजी की गई है, बताया गया है कि किस तरह से खुदा के राजों को बेपर्दा किया गया है। तो ये चीज़ जो है एक मुल्ला वजही की सबरस में भी, कुतुब मुश्तरी में मिलती है। दूसरी अगर हम देखें तो उन्हीं के दौर के, उनके आसपास के इब्ने निशाती हैं,
इब्ने निशाती, अच्छा,
गवासी हैं, उसके बाद आपके वली दकनी हुए हैं। वली दकनी तो जानते ही आपके, वली दकनी, वली का दीवान देखिए आप, वली के बारे में अगर आप जानना चाहें तो वली दकनी वो शख्सियत हैं कि जिसने शुमाली हिंद में जाकर वहाँ के लोगों को ये बताया कि उर्दू शायरी क्या होती है, और उनकी नक्काली करते हुए वहाँ से उर्दू शायरी वली से सीखी उन्होंने। वरना इससे पहले तो शुमाली हिंद में, यानी लखनऊ, दिल्ली और इस तरफ अगर आप जाएं तो वहाँ उर्दू में शेर कहने को कमतर समझा जाता था।
अच्छा।
जब वली वहां गए और उनकी खूबसूरती देखी उन लोगों, वहां के शोरा ने, कि हम तो फारसी में शायरी कर रहे हैं, ये इसमें भी शायरी की जा सकती इतनी खूबसूरत, तो फिर वली की तकलीद की। इब्ने निशाती ने कहा कि शेर में गौर व फिक्र करना जरूरी है। अब अगर इब्ने निशाती जो आज से 400-500 साल पहले हुए हैं और उन्होंने ये बात कही, तो ये बात आती किस जुमरे में है? ये तनकीद के जुमरे में आती है। क्योंकि वो बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें गौर व फिक्र होना चाहिए। तनकीद ये बताती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो वो अच्छा और बुरा अलग कर देती है। इस तरह से सिराज औरंगाबादी की यहाँ देखते हैं हम।
सिराज औरंगाबादी की तकनीक की क्या विशेषताएं आपको लगती है?
हाँ, सिराज औरंगाबादी की जो शायरी है, तो खासियत सिराज औरंगाबादी की यह है कि उनके अशार में हमको, चूंकि वो भी दखनी से, दखनी जुबान में, जो हमारी मतलब हमारे इलाके की जुबान
बराबर।
है, तो उस जुबान के शायर थे, लेकिन उनकी शायरी और इस उनसे पहले के जो शायरी थी उसमें सिराज के यहाँ हमको रवानी ज्यादा मिलती है,
अच्छा,
क्योंकि सिराज औरंगाबादी ने खुद कहा है कि शेर में रवानी होनी चाहिए।
क्या बात है,
ये सिराज औरंगाबादी का तनकीदी बसीरत थी,
तनकीदी, सही बात है।
वो इस तरह की तनकीद को, तो ये अव्वलिन रवायत में है, ये सब हम देखते हैं कि ये तनकीद की अव्वलिन रवायत के तौर पर ये सब चली आती हैं। और एक चीज जो आप
हाँ
बात कर रहे थे, मैं बीच में से, कि मशरकी तनकीद
बराबर,
हम उसको कहते हैं अंग्रेजी में ओरिएंटल क्रिटिसिज्म, हम उसको ईस्टर्न क्रिटिसिज्म नहीं, ओरिएंटल, क्योंकि
ओरिएंटल के,
ये तो ये मशरकी तनकीद का कहाँ से ये सब आया है। और एक उसके बाद है मगरबी तनकीद, तो मशरकी तनकीद और मगरबी तनकीद, ये दो में और बहुत सारे नुकात हैं
अच्छा
जो शायद इसमें कवर होने जैसे हैं वो आगे। एक किस्म में मैं अगर मशरकी तनकीद पर बात करूँ, तो मशरक में अगर अदब की बहुत ज़्यादा सेहतमंद रवायात अगर कहीं रही, तो वो अरब में, फिर ईरान में
ईरान में, अच्छा
और हिंदुस्तान में, ये तीन।
अच्छा
तो मशरक में हम अपने यहाँ के मुताले में ज़्यादातर मशरक में इन तीन ममालिक की तनकीदी रवायात को लेते हैं।
सही बात
अच्छा, देखिए, अरबों के बारे में ये कहा जाता है कि अरब जुबान, अरबी जुबान बहुत फसी और बलीग जुबान है। उसका मैं एक मामूली आपको मिसाल दूं कि अरबी में अगर किसी को बुरा बोलना हो, अगर मुझे ये कहना है कि तू मर जाए, कितना बुरा लगेगा,
बहुत बुरा लगेगा,
लेकिन अरब उसको ऐसे कहते हैं कि तेरी मां तुझ पर रोए, और मां कब रोएगी, जब वो कुछ हो जाएगा उसका बुरा।
सही
तो बुरा भी नहीं, उसने कहा कुछ, मैंने कहा क्या कहा, कहा मैंने कहा तेरी मां तुझको रोए, रोएगी कब जब तू नहीं रहेगा, और बुरा भी नहीं लगा, मैंने मरने का तो कहा ही नहीं। ये
नहीं
उस जुबान की बलागत है अरबी जुबान की। उनके यहां तनकीदी शऊर इतना स्ट्रांग हुआ करता था, आज की बात नहीं, इस्लाम से भी पहले,
अच्छा
हाँ, तो उस वक्त इतना स्ट्रांग हुआ, इतना मजबूत हुआ करता था कि अक्कास का जो मेला होता था वहां अरब में, मक्का में अक्कास का एक मेला होता था, बड़ा, बहुत बड़ा, जैसा नेशनल फेस्टिवल उनका।
बरोबर,
तो उस मेले में मुशायरे की, यानी शायराना मुकाबले होते थे, और उन मुकाबलों में वो जो सबसे अच्छी तख्लीक पेश करता था उसको अशअरु शोरा का खिताब दिया जाता था,
अच्छा
पोएट लॉरियट, अशअरु शोरा ये खिताब दिया जाता था उसको।
क्या बात है,
तो ये खिताब जो देते थे वो अरब उस शायर को, तो ऐसे ही तो बांट नहीं देते थे,
नहीं सही बात,
जाहिर सी बात है कि पहले वो पैमाने जो उन्होंने तय कर रखे हैं, उन पैमानों पर, वो तनकीद के पैमाने थे,
कुरान आपके, सही बात,
वो थे तनकीद के पैमाने,
सही बात,
फिर उन पैमानों पर वो आपने जो लिखा, ठीक है लाइए बताइए। तो एक तो होता नहीं था, कई लोग हर एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था,
सही बात है,
फिर हर एक को बराबर देखते थे वो, उसमें ये है या नहीं, वो है या नहीं,
सही बात,
ये चीज़ है या
सही
नहीं, वो
बात,
चीज़। तो ये एक उनकी अरब तनकीद के रवायत,
रवायत,
उसमें हमको नाम मिलते हैं बड़े, अगर आप देखें कि कदामा बिन जाफर है, उसके बाद आपके मोहम्मद बिन सलाम अल आजमी है, उनके बाद के दौर में अगर हम देखें तो इब्ने खलदून हैं, उनसे पहले भी अगर हम देखें तो इब्ने सलाम हैं, जाहिज हैं, इब्ने कुतैबा हैं, ये सब नाम ऐसे
सब
हैं कि
सही
जो
बात
अरबी तनकीद के बड़े नाम हैं।
सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि जो वो जो किताब दिया जाता था
जी
पोएट को,
जी
तो ये ऐसा लगता है कि समाज भी उतना ही अलर्ट या सजग रहना चाहिए समाज में, ताकि वो हर किसी साहित्य का स्वागत न करे, जो बुरा है उसे बुरा कहे, उसे नकार दे, और और जो समाज के लिए अच्छा है
जी जी,
जो तकनीकी तनकीद अपना काम करती है वो जिम्मेदारी असल में समाज की भी है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने तनकीद के बारे में, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे तनकीद के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं, और ये भी जिम्मेदारी उन्होंने समझ ली है कि वो जो भी कुछ पढ़ते हैं उसको किस नजरिए से देखना चाहिए। अगर उसमें कई धर्म को उसमें कुछ दरार पैदा करने वाली बात हो तो वो बच्चे खुद ब खुद उसको नकार देंगे।
बिल्कुल।
तो यानी तनकीद एक अपने मन में भी है
सही,
और उसका अमल करने से क्या बुरा क्या अच्छा ये समझने की काबिलियत हम में आ जाती है। और इस तरह से जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, चाहे वो अपने कोर्स का मटेरियल हो या किसी बाहर का, तो वो पढ़ने समय अपना एक जो अप्रोच है तनकीदी अप्रोच वो डेवलप करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई आपको ऐसा गुमराह नहीं कर सके कि मैंने ये लिखा है उसके आप अमल करो, इसका स्वीकार करो, क्योंकि आप खुद इतने जिम्मेदार बन जाओगे कि आप हर किसी का लिखा हुआ नहीं मानोगे। तो सर आज आपने ये बहुत अच्छी जानकारी हमारे बच्चों को दी, मैं चाहूंगा कि ऐसी बातें और होंगी अपनी अगले प्रोग्राम में, और बच्चों ने तनकीद के बारे में जो मालूमात अभी की है उसके अच्छी तरह से सुने, और जैसे कि आप किताब पढ़ने जाओगे तब एक ख्याल अपने दिल में उतार लेना कि मैं ये जो पढ़ रहा हूँ क्या ये मुझे स्वीकार है, उसमें क्या क्या गलतियाँ मुझे लगती है, और किस किस बातों का जो अभी आउटडेटेड हो गई है या वो समझो आउटडेटेड हुई लेकिन उसके अलग एनालिसिस भी कर सकते हैं, तो वो एनालिसिस करके उसके क्या नए मायने हैं वो मायने देख के अगर हम ना केवल अपने पढ़ाई बल्कि जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, मानो के न्यूज़पेपर उसमें कोई ऐसी खबर आई हो
जी।
तो उस पर हम अगर भड़क गए तो कुछ रिएक्शन हो सकती है, जैसे पत्थरबाजी होती है, लोग दुकानें बंद कर देते हैं, दंगे होते हैं, तो इस तरह की जो हरकत है वो अपने से ना हो। और जैसे कि आपने बताया कि तनकीद समाज स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं चाहूँगा कि बच्चों अपने बच्चे इसके बारे में और सोचे, और ये तनकीद का जो अप्रोच है जो दृष्टिकोण है वो अपने मन में भी विकसित करें, ताकि उनको भटकाने वाला कोई ऐसा समाज में ना पैदा हो। सर आज आप यहाँ आए और हमारे बच्चों को तनकीद के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।